कल्पना कीजिए कि कोई इंसान पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, मतलब गहरे संकट में है, और अचानक उसे किसी अनजान जगह से एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलती है।
तो ऐसे में जाहिर है कि वो बहुत खुश होगा।
बिल्कुल, स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो यही होनी चाहिए ना। कृतज्ञता, आंखों में आंसू और एक लंबा चौड़ा धन्यवाद संदेश।
हाँ, आमतौर पर तो लोग यही करते हैं।
लेकिन स्थिति तब अजीब हो जाती है जब वो इंसान उस मदद को स्वीकार करे और फिर एक पत्र लिखकर कहे कि पैसे भेजने के लिए शुक्रिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी।
अरे बाप रे, आज के जमाने में तो कोई भी इसे एहसान फरामोशी कहेगा,
है ना। मतलब ये बहुत ही अजीब है, लेकिन इतिहास में जब हम झांकते हैं तो लगभग 2000 साल पहले लिखा गया ऐसा ही एक अजीब सा लगने वाला पत्र दरअसल एक पूरे समाज के सत्ता के ढांचे को चुनौती दे रहा था।
बिल्कुल, और यही इस विषय की गहराई है।
हाँ, और इसी गहराई को समझने के लिए इस विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का मिशन है डॉक्टर मैथ्यू एस हार्मन के शोध के जरिए ठीक इसी पत्र यानी पॉल के फिलिपियों को लिखे पत्र के अध्याय 4 का विश्लेषण करना,
जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है।
मैं भी यही सोच रही थी। हम जानेंगे कि सच्ची संतुष्टि आखिर होती क्या है, प्राचीन रोम का वो कौन सा पैट्रन क्लाइंट यानी संरक्षक और आश्रित का सिस्टम था, और दुनिया के सबसे मशहूर कोर्ट्स में से एक का असली मतलब क्या है, एक ऐसा कोर्ट जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है।
इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किसी प्राचीन ऐतिहासिक घटना का कोई सूखा दस्तावेज नहीं है।
हाँ, ये आज के संदर्भ में भी बहुत काम का है।
बिल्कुल, ये सीधे तौर पर इस बात की पड़ताल करता है कि इंसान सत्ता, पैसे और रिश्तों के बीच के जटिल जाल को कैसे नेविगेट करता है।
मतलब पॉल जब ये पत्र लिख रहे थे ना, तो वो किसी आरामदायक बंगले में नहीं बैठे थे।
वो तो रोम की जेल में थे ना। हाँ, एक अंधेरी जेल में जंजीरों में जकड़े हुए। उनका जीवन पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर था।
और ऐसी भयानक स्थिति में जब फिलिपी शहर के लोगों ने उनके लिए कुछ आर्थिक मदद भेजी,
तो पॉल का जवाब उस पूरे ग्रीको रोमन समाज के बुनियादी नियमों को ही तोड़ रहा था। डॉक्टर हार्मन अपने विश्लेषण में बताते हैं कि पॉल ने एक बहुत ही अनोखे पैटर्न का इस्तेमाल किया।
अच्छा, वो पैटर्न क्या था?
पहले वो मदद को स्वीकार करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं कि शायद पहले फिलिपी के लोगों को मदद भेजने का मौका नहीं मिला होगा, और अंत में वो एक बहुत बड़ी शर्त या कह लें क्वालिफायर लगा देते हैं।
मतलब वो सीधे सीधे धन्यवाद नहीं कहते।
नहीं, वो साफ कहते हैं कि मैं इस मदद के लिए खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत की वजह से ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसे अक्सर विद्वानों ने बिना धन्यवाद वाला धन्यवाद कहा है।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर यह सच में अहंकार से भरा हुआ लग सकता है।
बिल्कुल, एक आदमी जेल में भूखा मर रहा है, उसे पैसे मिलते हैं और वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी।
हाँ, अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को न समझें तो पॉल एक बहुत ही घमंडी इंसान नजर आते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि वो किस चीज से बच रहे थे। प्राचीन रोम का ये पैटर्न क्लाइंट सिस्टम आखिर काम कैसे करता था?
देखिए, प्राचीन रोम के समाज को समझने के लिए ना, हमें आज के इस लोकतांत्रिक या कल्याणकारी राज्य के विचारों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना होगा।
मतलब वहाँ कोई सरकारी मदद या एनजीओ जैसी चीजें नहीं थी?
बिल्कुल नहीं, रोम का समाज पूरी तरह से इसी पैटर्न क्लाइंट व्यवस्था पर टिका था। जिनके पास अथाह पैसा, जमीन, ताकत और प्रभाव होता था,
वो पैटर्न कहलाते थे।
हाँ, वो पैटर्न या संरक्षक कहलाते थे, और समाज का बाकी हिस्सा जिनके पास साधनों की कमी होती थी, वे उनके क्लाइंट यानी आश्रित बन जाते थे।
तो ये सिर्फ एक अमीर आदमी का गरीब की मदद करना नहीं था?
अरे नहीं, ये कोई साधारण दान पुण्य नहीं था यार, ये एक बहुत ही कठोर अलिखित सामाजिक अनुबंध था। मतलब हर सुबह क्लाइंट्स को अपने पैटर्न के घर के बाहर लाइन में लगना पड़ता था।
सच में?
रोज सुबह?
हाँ।
इस प्रथा को सैल्यूटेशियो कहा जाता था। वे अंदर जाते, पेट्रन की तारीफों के पुल बांधते, समाज में उसके सम्मान को बढ़ाते, और इसके बदले में पेट्रन उन्हें खाने पीने का सामान, कुछ पैसे या कानूनी सुरक्षा दे देता था।
लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इस मदद के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होंगे।
बिल्कुल, इस सिस्टम का सबसे खतरनाक पहलू यही था कि मदद के साथ एक अदृश्य बेड़ी भी आती थी।
अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये मुझे एक बहुत ही आक्रामक कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप के मैकेनिज्म जैसा लगता है।
हाँ, आप इसे वैसे समझ सकती हैं।
मतलब जब कोई बहुत बड़ी कंपनी किसी छोटे क्रिएटर या संस्था को स्पॉन्सर करती है तो पैसा कभी भी मुफ्त नहीं होता, उसके पीछे एक सॉफ्ट पावर काम करती है।
बिल्कुल, स्पॉन्सर हावी होने लगता है,
ऐसा दबाव बन जाता है जहां लेने वाला हमेशा के लिए देने वाले के प्रति वफादार रहने के लिए मजबूर हो जाता है।
एकदम सही, और पॉल इसी पावर डायनामिक को, इस सत्ता के खेल को बहुत अच्छी तरह समझते थे।
तो क्या पॉल के मामले में भी यही हो रहा था? क्या उन्हें डर था कि फिलिपी के लोग पैसा भेजकर उनके काम या उनके संदेश पर नियंत्रण करना चाहते हैं?
देखिए, पेट्रन को दान देने के बदले में समाज में जो प्रतिष्ठा और रुतबा मिलता था ना, वो उसके अहंकार को पोषित करता था। जब कोई पेट्रन पैसा देता था तो ये मान लिया जाता था कि अब वो क्लाइंट के फैसले तय करेगा।
मतलब क्लाइंट की अपनी कोई आवाज नहीं रह जाती थी?
बिल्कुल नहीं, क्लाइंट को हर सार्वजनिक मंच पर पेट्रन का समर्थन करना ही होगा, चाहे पेट्रन सही हो या गलत। और पॉल ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका सुसमाचार या उनका संदेश किसी इंसान के पैसे के बोझ तले दब जाए।
तो वो एक तरह से अपनी आजादी बचा रहे थे।
स्वार्थी नियमों पर आधारित नहीं है पॉल का वो बिना धन्यवाद वाला धन्यवाद।
हाँ।
दरअसल फिलिपी के लोगों को ये बताने का तरीका था कि मैं आपके इस उपहार को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पेट्रन बन गए हैं
और मैं आपका खरीदा हुआ क्लाइंट बन गई हूँ।
बिल्कुल,
लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर मैं किसी इंसान से पैसे लूं और उससे कहूं मैं तुम्हारा एहसान नहीं मानूंगी तो ये तो बहुत अशिष्टता लगेगी।
हाँ, सतही तौर पर ये अशिष्ट लग सकता है।
अगर फिलिपी के लोग पेट्रन नहीं है और पॉल क्लाइंट नहीं है तो इस रिश्ते का क्या नाम है? ये मदद फिर किस खाते में जा रही है? एक तरह से ये सीधे तौर पर किसी का एहसान न मानने का एक चालाक तरीका नहीं लगता?
और हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पॉल इस पूरी सामाजिक संरचना को जड़ से पलट देते हैं।
वो कैसे?
पॉल इस लेन देन को क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल, इंसान से इंसान के बीच का लेन देन मानने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं।
अच्छा, तो फिर वो इसे क्या मानते हैं?
वो इसे एक ऊर्ध्वधर यानी वर्टिकल, इंसान से ईश्वर के बीच के लेन देन में बदल देते हैं। पॉल कहते हैं कि असल में ईश्वर ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र और असली पेट्रन है।
अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल, पॉल और फिलिपी के लोग दोनों ही उस एक ईश्वर के क्लाइंट हैं। जब फिलिपी के लोगों ने पॉल को पैसे भेजे तो पॉल ने उसे अपने लिए दिया गया दान नहीं माना, उन्होंने इसे एक सुगंधित भेंट या एक आध्यात्मिक बलिदान का नाम दिया।
तो पॉल का तर्क ये था कि फिलिपी के लोगों ने ये भेंट ईश्वर की आराधना के रूप में ईश्वर को दी है।
हाँ, और चूंकि ईश्वर सबका पेट्रन है तो उसने उस भेंट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से अपने एक दूसरे क्लाइंट यानी पॉल की जरूरत पूरी करने के लिए कर लिया।
ये तो बहुत ही चतुराई भरा और दार्शनिक नजरिया है। अगर इसे इस तरह से देखा जाए तो सारा पावर डायनामिक ही खत्म हो जाता है।
एकदम खत्म हो जाता है,
क्योंकि जब ये इंसान से इंसान का लेन देन होता है तो देने वाला खुद को ऊपर और लेने वाले को नीचे समझने लगता है। एक तरह का अहंकार जन्म लेता है।
सही बात है,
लेकिन जब इसे इंसान से ईश्वर का लेन देन माना जाता है तो देने वाला भी नम्र रहता है, क्योंकि वो मान रहा है कि उसने ये सीधे ईश्वर को अर्पित किया है।
और लेने वाला यानी पॉल किसी इंसान का गुलाम नहीं बनता, क्योंकि वो मानता है कि ये मदद उसे सीधे असली पेट्रन से मिली है।
ये समाज के एक बहुत ही जहरीले अहंकार को खत्म करने का एक बेहद खूबसूरत तरीका था।
और इसी वर्टिकल रिश्ते के कारण पॉल एक बहुत बड़ा दावा कर पाते हैं। क्योंकि वो पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हैं, उन्हें किसी इंसान की दी हुई चीज या इंसान द्वारा पैदा की गई परिस्थिति से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
मतलब वो परिस्थितियों से आजाद हो गए।
हाँ, हाँ। और इसी संदर्भ में डॉक्टर हार्मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाते हैं। पॉल कहते हैं कि उन्होंने संतुष्टि का एक रहस्य जान लिया है।
रहस्य?
हाँ, सीक्रेट। प्राचीन दुनिया के साहित्य को अगर हम खंगालें तो ये रहस्य शब्द बहुत ही विशिष्ट अर्थ रखता था। ये शब्द सीधे तौर पर उस समय के मिस्ट्री रिलीजन यानी रहस्यमयी धर्मों से लिया गया था।
मिस्ट्री रिलीजन, ये प्राचीन रोम में कैसे काम करते थे? क्या ये कोई गुप्त पंथ थे?
हाँ, प्राचीन ग्रीको रोमन दुनिया में कई ऐसे गुप्त पंथ होते थे, जैसे कि डायोनिसिस या मिथ्रास के पंथ। ये धर्म बहुत ही गुप्त तरीके से काम करते थे।
मतलब हर कोई इनमें शामिल नहीं हो सकता था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें शामिल होने के लिए लोगों को कुछ विशेष और अक्सर अजीबोगरीब अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता था।
वो इनिशिएशन राइट्स जैसे?
बिल्कुल, और जब कोई व्यक्ति इन पंथों का हिस्सा बन जाता था तो उसे उस धर्म का कोई गहरा रहस्य बताया जाता था। इन रहस्यों का वादा ये होता था कि इन्हें जानने के बाद व्यक्ति को भौतिक दुनिया में अपार सफलता, धन या आध्यात्मिक ताकत मिल जाएगी।
अच्छा, तो लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और दुनियावी सुखों को पाने के लिए इन पंथों में शामिल होते थे।
हाँ, एक तरह से वो सफलता की कुंजी ढूंढ रहे होते थे।
तो पॉल यहाँ जानबूझकर उसी सांस्कृतिक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक तरह से उन मिस्ट्री रिलीजन्स पर तंज कस रहे हैं।
एकदम सही पकड़ा आपने।
वो कह रहे हैं कि असली रहस्य किसी गुप्त गुफा या अनुष्ठान में नहीं छिपा है, बल्कि असली रहस्य उन्होंने ढूंढ लिया है। लेकिन जहाँ ग्रीक और रोमन पंथ दुनियावी सफलता का रहस्य बेच रहे थे, पॉल की संतुष्टि का रहस्य बिल्कुल अलग था।
हाँ, क्योंकि वो एक अंधेरी जेल में बैठकर ये बात लिख रहे थे, किसी आलिशान महल में नहीं।
बिल्कुल,
यह विरोधाभास ही इस पूरे पत्र की जान है। पॉल का रहस्य यह है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। पॉल बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब पेट खाली हो, शरीर पर कपड़े ना हो, तब कैसे जिया जाता है।
और जब बहुत कुछ हो तब भी।
हाँ, और वो ये भी जानते हैं कि जब सब कुछ बहुत ज्यादा हो, चारों तरफ विलासिता हो, तब कैसे जिया जाता है। डॉक्टर हार्मन अपने विश्लेषण में जोर देते हैं कि संतुष्टि का मतलब परिस्थितियों से हार मान लेना नहीं है।
मतलब ये कोई निराशावादी सोच नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें पूरी तरह से खुद को पर्याप्त महसूस करना। ये लालच का एकदम उल्टा है।
उस समय तो स्टोइक दार्शनिक भी ऐसा ही कुछ कहते थे ना।
हाँ, स्टोइक दार्शनिकों में एक आत्मनिर्भरता का विचार बहुत मशहूर था, जहाँ लोग कहते थे कि मुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, मैं खुद में पूर्ण हूँ।
लेकिन पॉल की सोच इससे अलग थी।
बिल्कुल, पॉल ने इस अहंकारी आत्मनिर्भरता को खारिज करके इसे ईश्वर निर्भरता में बदल दिया।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ठीक इसी जगह पर फिलिपियों 4:13 का वो मशहूर श्लोक आता है, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है।
जो कि आज बहुत ही अलग तरीके से इस्तेमाल होता है।
हाँ, आज के दौर में ये श्लोक एक अलग ही रूप ले चुका है। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े एथलीट्स इसे अपने जूतों पर लिख लेते हैं, या बास्केटबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी इसे अपनी आंखों के नीचे पेंट कर लेते हैं।
बिल्कुल, जैसे वो कोई जादू टोना हो।
हाँ, लोग इसे एक प्रोडक्टिविटी हैक या गेम जीतने के जादुई मंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता मानो अगर कोई परीक्षा देने जा रहा है या कोई बिजनेस डील क्रैक करने जा रहा है, तो वो इस श्लोक को पढ़कर सोचेगा कि उसे कोई अलौकिक शक्ति मिल जाएगी जिससे वो हार नहीं सकता। तो क्या हम इस श्लोक के ऐतिहासिक और वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से गलत नहीं निकाल रहे हैं?
हम सिर्फ इसका अर्थ गलत नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि हम इसे ठीक उसी तरह का एक सस्ता मिस्ट्री रिलीजन बना रहे हैं जिसका पॉल खुद विरोध कर रहे थे।
अरे बाप रे, मतलब हम वही गलती दोहरा रहे हैं।
बिल्कुल, हम इसे अपनी मनचाही चीजें पाने का एक टूल बना रहे हैं। डॉक्टर हार्मन बहुत सख्ती से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये कोई सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र नहीं है।
जब पॉल जेल की काल कोठरी में ये लिख रहे थे, तो उनका मतलब ये नहीं था कि मैं इस जेल की दीवारें तोड़कर बाहर निकल सकता हूँ।
हाँ, या मैं रातों रात अमीर बन सकता हूँ। वो दरअसल ये कह रहे थे कि मुझे चाहे बहुतायत मिले या मुझे भूखा रहना पड़े, मुझे चाहे आजादी मिले या मुझे इस जेल में मार दिया जाए, मैं मसीह की दी हुई ताकत से हर परिस्थिति में अडिग रह सकता हूँ।
मतलब ये हर मनचाही चीज को पा लेने की ताकत नहीं है।
नहीं, ये हर भयानक से भयानक और अच्छी से अच्छी स्थिति में संतुष्ट बने रहने की ताकत है।
यानी ये सफलता हासिल करने का मंत्र नहीं, बल्कि टिके रहने और सहने का मंत्र है। और मुझे लगता है गरीबी सहना तो मुश्किल है ही, लेकिन अमीरी सहना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो इंसान को घमंडी बना देती है।
आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, अमीरी का अपना अलग खतरा है।
हाँ, और यहाँ ग्रीक अनुवाद की एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी बात सामने आती है, जिसका जिक्र डॉक्टर हार्मन के शोध में है, जिसे हम अक्सर अंग्रेजी में थ्रू हिम या उसके द्वारा पढ़ते हैं। डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि उसका एक और सटीक ग्रीक अनुवाद इन हिम या उसमें भी हो सकता है।
हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है।
बिल्कुल नहीं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उसके द्वारा का मतलब है कि हम ईश्वर को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए,
जैसे कि ईश्वर हमारा कोई असिस्टेंट हो।
हाँ, लेकिन उसमें का मतलब है कि हम मसीह के दायरे में है। जब कोई उस दायरे में होता है, तब उसे वो ताकत मिलती है जो उसे अमीरी के अहंकार और गरीबी की निराशा दोनों से बचाती है। ये ताकत इंसान की अपनी नहीं होती, बल्कि उस दायरे से आती है।
ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। और अगर हमारी संतुष्टि और हमारी सारी ताकत उस परम पैटर्न से आती है, तो ये विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट देता है।
वो कैसे?
देखिए, अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, अगर हम हर चीज के लिए उस दायरे पर निर्भर हैं, तो सवाल ये उठता है कि उन चीजों का क्या जो हमारे पास पहले से हैं, जैसे कि बैंक में रखा पैसा, हमारा घर, हमारी गाड़ियां, या यहां तक कि हमारा समय।
ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर सब कुछ उस एक असली पैटर्न का है, तो फिर हमारा क्या है?
इसी पर डॉक्टर हार्मन ने एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है, स्टूवर्डशिप।
स्टूवर्डशिप मतलब देखभाल करना।
हाँ, यानी हम किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ उसके केयरटेकर या रखवाले हैं। और इसे समझाने के लिए डॉक्टर हार्मन ने अपने एक दोस्त की मछली यानी उस फिश बोल का जो उदाहरण दिया है, वो बहुत ही मजेदार और आंखें खोलने वाला है।
अरे हाँ, वो फिश बोल वाला किस्सा, वो क्या था?
वो उदाहरण स्टूवर्डशिप के पूरे मैकेनिज्म को बहुत सरलता से समझा देता है। डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि जब उनके दोस्त कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने गए, तो वे अपनी पालतू मछली का बोल उनके घर छोड़ गए।
अच्छा, तो जिम्मेदारी उनके सिर आ गई।
बिल्कुल। अब डॉक्टर हार्मन का अनुभव ये था कि वो उस छोटी सी मछली को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए और सतर्क रहते थे। वे दिन में कई बार जांचते थे कि मछली को खाना दिया या नहीं, पानी का तापमान ठीक है या नहीं।
मतलब वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे।
हाँ, वे उस मछली की देखभाल एक चील की नजरों की तरह कर रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें उस मछली से कोई बहुत गहरा लगाव हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मछली उनकी अपनी नहीं थी।
बिल्कुल। और अगर वो मछली मर गई तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उनकी निगरानी में किसी और की संपत्ति कैसे नष्ट हो गई।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस फिश बोल वाले उदाहरण को अगर हम आज के आधुनिक जीवन की एनालॉजी से जोड़ें, तो ये मुझे बिल्कुल एयरबीएनबी के सिस्टम जैसा लगता है।
अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे?
देखिए, जब कोई अपने खुद के घर में होता है,
हाँ?
तो वो बहुत लापरवाह हो सकता है। लोग सोफे पर गंदे जूते रखकर बैठ जाते हैं, दीवारों पर पैर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरा ही तो घर है, मेरी जो मर्जी मैं करूं।
हाँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
लेकिन जब कोई एयरबीएनबी बुक करता है, तो एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। वहां एक रेटिंग सिस्टम होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। इंसान अचानक से बहुत सचेत हो जाता है।
वो ध्यान रखता है कि कुछ टूटे फूटे नहीं।
बिल्कुल, वो सुनिश्चित करता है कि कांच का ग्लास ना टूटे, सब कुछ साफ रहे, क्योंकि उसे पता है कि वो मालिक नहीं है और उसे अपनी हर हरकत के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा।
बिल्कुल।
और स्टूवर्डशिप भी तो यही है ना?
बिल्कुल यही है।
पॉल के मुताबिक ये पूरी दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज एक विशाल एयरबीएनबी की तरह है, और हम असल मालिक के प्रति जवाबदेह हैं।
ये तुलना न इस अवधारणा के बिल्कुल केंद्र पर प्रहार करती है। मतलब जब इंसान मानता है कि पैसा उसका अपना है, तो वो सोचता है मैं इसमें से थोड़ा बहुत दान कर दूंगा और बाकी अपनी मर्जी से उड़ा दूंगा,
जो कि बहुत ही आम सोच है।
हाँ, लेकिन जब इंसान स्टूवर्डशिप के नजरिए से सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि 100% पैसा, संपत्ति और संसाधन असल में उस परम पेट्रन के हैं।
तो इंसान का काम सिर्फ एक मैनेजर का रह जाता है।
बिल्कुल, इंसान का काम सिर्फ इतना है कि वो एक अच्छे मैनेजर की तरह ये तय करे कि मालिक के संसाधनों का सबसे अच्छा और सही इस्तेमाल कैसे किया जाए।
और ये बात सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, है ना?
एकदम सही। डॉक्टर हार्मन इस विचार को सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रखते, वे कहते हैं कि ये हमारे समय और हमारी ऊर्जा पर भी समान रूप से लागू होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास दान करने के लिए पैसे नहीं है।
लेकिन उनके पास समय तो है।
हाँ, समय, क्षमताएं और ऊर्जा भी उसी असली पेट्रन की दी हुई अमानतें हैं।
ये नजरिया इंसान को पूरी तरह से विनम्र बना देने वाला है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत हैरान करती है, वो ये है कि ये दार्शनिक विचारधारा सिर्फ फिलिपी के एक छोटे से समूह या जेल में बंद पॉल तक ही सीमित नहीं रही।
बिल्कुल नहीं, इसकी गूंज बहुत दूर तक गई थी।
हाँ, अगर हम ये मान लें कि असली राजा या असली पेट्रन कोई और है, रोम का सम्राट नहीं, तो इस विचार ने उस समय की दुनिया के सत्ता केंद्रों में पक्का खलबली मचा दी होगी। ये तो एक मूक विद्रोह था,
एक बहुत ही गहरा और शांतिपूर्ण विद्रोह। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो इसका सबसे बड़ा सबूत हमें डॉक्टर हार्मन के विश्लेषण के अंतिम हिस्से में मिलता है। सभी संतों की ओर से नमस्कार, विशेषकर उन लोगों की ओर से जो सीजर के घराने के हैं।
एक सेकंड, सीजर का घराना यानी रोम के सम्राट का अपना महल।
हाँ, रोम के साम्राज्य में
सीजर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रन मानता था। वो उस पूरे पेट्रन क्लाइंट पिरामिड के सबसे ऊपरी शिखर कर बैठा था।
उसका मानना था कि पूरी दुनिया उसकी क्लाइंट है।
बिल्कुल, और सीजर का घराना कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, ये रोमन साम्राज्य की पूरी नौकरशाही, प्रशासन और सम्राट के महल के कर्मचारियों का विशाल समूह था।
तो ये कितनी बड़ी विडंबना है।
हाँ, जरा सोचिए, सुसमाचार और ये नई विचारधारा उस समय की दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगह, सबसे सुरक्षित किले के अंदर तक पहुंच चुकी थी।
जिन लोगों का काम रोमन सम्राट की सेवा करना था, जो सीजर के पैसों पर पलते थे, वे लोग अब छुप छुप कर उस असली पेट्रन के क्लाइंट बन चुके थे।
बिल्कुल, रोम का सम्राट जो खुद को भगवान मानता था, उसे ये भनक तक नहीं थी कि उसके अपने ही घर के नौकरशाह, उसके अपने ही कर्मचारी अब किसी दूसरे राजा की सत्ता को सबसे ऊपर मान चुके हैं।
ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक मोड़ है। ये दिखाता है कि बिना किसी तलवार या सेना के, सिर्फ एक विचारधारा और अनुग्रह के सिद्धांत ने रोमन साम्राज्य की जड़ों को कैसे हिला दिया था।
और जैसा कि डॉक्टर हार्मन बताते हैं, पॉल ने इस पत्र की शुरुआत ग्रेस यानी अनुग्रह से की थी और अंत भी इसी शब्द से किया है।
मतलब पूरी चर्चा उसी ढांचे के अंदर है।
हाँ, पूरी चर्चा, चाहे वो पैसे की हो, संतुष्टि की हो या जेल की, वो सब इस अनुग्रह के ढांचे के भीतर ही रहती है।
और अनुग्रह का ये ढांचा ही सब कुछ बदल देता है। ये इस बात का प्रमाण है कि असली ताकत हथियारों, महल की दीवारों या बैंक के बैलेंस में नहीं है।
बिल्कुल सही, असली ताकत उस वैचारिक स्वतंत्रता में है जो तब मिलती है जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे किस पर निर्भर होना है।
हाँ, जब कोई ये जान लेता है कि उसका असली पेट्रन कौन है, तो वो दुनिया के हर पेट्रन से आजाद हो जाता है,
और यही सच्ची संतुष्टि है।
तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सार निकालें, तो बात यहाँ आकर टिकती है कि सच्ची संतुष्टि चीजें जमा करने या पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में नहीं है।
बिल्कुल, वो एक मिथक है।
हाँ, आज की दुनिया में जहाँ हर कोई सेल्फ सफिशिएंट बनने की अंधी दौड़ में है, जहाँ माना जाता है कि हर मदद के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ या शर्त छिपी होती है, पॉल का ये पत्र एक बहुत ही ताजा दृष्टिकोण देता है।
हाँ, ये सिखाता है कि निर्भरता कोई कमजोरी नहीं है, बशर्ते निर्भरता सही जगह पर हो।
एकदम सही बात। जब इंसान ये मान लेता है कि जो कुछ भी उसके पास है, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो या जीवन की सांसें हो, वो सब सिर्फ एक अमानत है, तो उसके अंदर से खोने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
और यही वो असली रहस्य है, खोने के डर से आजादी। जब कुछ अपना है ही नहीं, तो छिन जाने का डर कैसा। यही विचार इंसान को हर परिस्थिति में अडिग और संतुष्ट बनाए रखता है।
ये सच में नजरिए को पूरी तरह से बदल देने वाली चर्चा रही है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए, अगर हम उस फिश बोल और एयरबीएनबी वाले उदाहरण पर वापस लौटे, तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है।
बताइए।
अगर ये सच है कि इंसान का समय, पैसा, ऊर्जा और यहाँ तक कि उसका पूरा जीवन सब कुछ सिर्फ एक फिश बोल की तरह किसी और की अमानत है, तो ये विचार इस बात को पूरी तरह से बदल देता है कि कोई भी अपनी जिंदगी का अगला एक घंटा कैसे बिताता है। हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है कि क्या वो खुद को उस एक घंटे का मालिक मानकर जी रहे हैं या एक जिम्मेदार केयरटेकर समझकर।
ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए।
बिल्कुल, इसी विचार के साथ इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विश्लेषण तक ऐसे ही सोचते रहिए और नया सीखते रहिए।